एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। तो आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही या तो लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं या फिर एकदम उलझन में पड़ जाते हैं। स्लावो जिजिक।
हाँ बिल्कुल।
उन्हें कभी कभी सांस्कृतिक सिद्धांत का एल्विस भी कहा जाता है। सोचिए जरा, मतलब दर्शन की दुनिया का रॉक स्टार।
हाँ कह सकते हैं एक तरह से।
और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, उनकी सबसे बड़ी खासियत शायद यही है कि वो गंभीर भारी भरकम दार्शनिक विचारों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं, खासकर लोकप्रिय संस्कृति से, फिल्में, चुटकुले, विज्ञापन, यहां तक कि मैंने सुना है टॉयलेट के डिजाइन से भी।
हाँ हाँ बिल्कुल, उनका अंदाज ही यही है।
तो आज हमारा इरादा है जिजैक के कुछ सबसे अहम और कह सकते हैं चौंकाने वाले विचारों को समझना। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये विचारक पॉप कल्चर के बहाने हमें हमारी दुनिया, हमारी इच्छाओं और हाँ हमारी विचारधाराओं के बारे में कुछ बहुत ही असहज करने वाली सच्चाइयों का आईना दिखाते हैं। तैयार है इस वैचारिक सफर के लिए?
बिल्कुल। और देखिए, जिजेक को समझने के लिए ना ये जानना जरूरी है कि वो कहाँ और किस माहौल में बड़े हुए हैं। उनका जन्म हुआ 1949 में ल्यूबियाना स्लोवेनिया में, जो तब यूगोस्लाविया का हिस्सा था, और ये मार्शल टीटो का दौर था। एक बहुत ही अजीब और अनोखा राजनीतिक प्रयोग था वो। यूगोस्लाविया एक साम्यवादी देश तो था लेकिन सोवियत गुट से बिल्कुल आज़ाद।
अच्छा।
उसे वास्तविक में मौजूद समाजवाद कहते थे, मतलब न पूरी तरह सोवियत मॉडल न पश्चिमी पूंजीवाद। तो इस माहौल ने, जहां उन्होंने एक अलग तरह के साम्यवाद और उसके विरोधाभासों को करीब से देखा, उनकी सोच पर बाद में बहुत गहरा असर डाला।
सही बात है।
और यही वजह है कि वो सिर्फ पूंजीवाद ही नहीं बल्कि जो स्थापित वामपंथी या अधिनायकवादी व्यवस्थाएं हैं उनकी भी उतनी ही तीखी आलोचना करते हैं।
हाँ, और उनका जो सोचने समझने का तरीका बना वो भी ऐसे वक्त में बना जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। सोचिए, उन्होंने अपनी आंखों के सामने सोवियत ब्लॉक को ढहते देखा, यूगोस्लाविया को टूटते देखा।
बिल्कुल।
90 का दशक।
हाँ, शीत युद्ध खत्म हुआ और एक नए किस्म का वैश्विक पूंजीवाद, जिसे हम नऊदारवाद कहते हैं, वो पूरी दुनिया में फैलने लगा। साथ ही पहचान की राजनीति, बहुसंस्कृतिवाद, ये सब मुद्दे भी उभर रहे थे। इन सब चीजों ने उनके विचारों को कह सकते हैं खाद पानी दिया।
और जहां तक प्रेरणा की बात है, उनकी लिस्ट तो बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ हेगल, मार्क्स जैसे क्लासिकल दार्शनिक,
हाँ बिल्कुल क्लासिकल।
तो दूसरी तरफ जैक्स लकान जैसा जटिल मनोविश्लेषक, और इन सब के साथ हॉलीवुड फिल्म में हिचकॉक का सस्पेंस, यहां तक कि ओपेरा और चुटकुले भी, ये मेल ही उन्हें खास बनाता है ना?
यही यही उनका यूएसपी है कह सकते हैं।
उनकी शुरुआती जीवन की बात करें तो वे ल्यूब्लियाना में पले बढ़े और वहीं विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में पीएचडी की। लेकिन कहानी में एक मोड़ भी है शायद।
हाँ, एक दिलचस्प मोड़ है। उनकी जो पीएचडी थीसिस थी, उसे उस समय की सरकार ने राजनीतिक रूप से थोड़ा संदिग्ध माना।
अच्छा।
हाँ, नतीजा ये हुआ कि उन्हें कई सालों तक कोई स्थायी अकादमिक नौकरी नहीं मिली। लेकिन शायद ये उनके लिए एक छुपा हुआ वरदान साबित हुआ।
कैसे?
क्योंकि इसी मुश्किल के चलते वो 80 के दशक में पेरिस गए और वहां उन्होंने मनोविश्लेषण में एक और डॉक्टरेट की, और वो भी किसके अंडर? जैक्स लकॉन के दामाद और प्रमुख शिष्य जैक्स एलन मिलर के निर्देशन में।
अरे वाह।
तो इसी दौर में लकॉन के जो बेहद मुश्किल और गूढ़ विचार हैं उन पर उनकी पकड़ बनी, और ये विचार बाद में उनके पूरे दर्शन का कह सकते हैं केंद्र बिंदु बन गए। ये 3 स्तंभ, हेगल, मार्क्स और लकॉन, यही जिजेक के विचार महल की बुनियाद हैं।
चलिए, तो अब उनके कुछ बड़े विचारों की गांठें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उनके सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट से, विचारधारा यानी आइडियोलॉजी की आलोचना। आमतौर पर हम सोचते हैं कि विचारधारा मतलब कुछ झूठे विचार या प्रोपोगेंडा, लेकिन जिजेक कहते हैं कि ये इतना सीधा मामला नहीं है।
बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जिजेक के सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी विचारों में से एक है। वो कहते हैं कि विचारधारा सिर्फ हमारे दिमाग में बैठे गलत विश्वासों का नाम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है और ज्यादा चालाकी से काम करती है। ये हमारी आदतों में, हमारे रोजमर्रा के कामों में, या तक कि हमारे मजे, या जिसे वो लकॉन की भाषा में एंजॉयमेंट या जुइसांस कहते हैं, उसमें बसी होती है। उनका वो मशहूर वाक्य है ना,
हाँ,
वे अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं।
They know very well what they are doing, but still they are doing it.
अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हो सकता है हम दिल ही दिल में पूंजीवाद की, उपभोक्तावाद की आलोचना करें, लेकिन फिर भी हम लेटेस्ट फोन खरीदते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, रिसाइकलिंग का डब्बा रखते हुए भी अंधाधुंध खपत करते हैं। क्यों?
हाँ, ये तो होता है।
क्योंकि इन कामों को करने में, इस सिस्टम का हिस्सा बने रहने में एक तरह का अचेतन छिपा हुआ सुख मिलता है। तो विचारधारा कोई बाहरी नकाब नहीं है जिसे हम बस उतार फेंकें, बल्कि ये वो सामाजिक ताना बाना है जिसे हम खुद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बुनते रहते हैं, जानते बूझते हुए भी।
वाह, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब हम सिर्फ मानते नहीं बल्कि विचारधारा को जीते हैं, उसे अपनी आदतों से सींचते हैं। तो क्या इसी छिपे हुए पहलू को, जिसे हम देख नहीं पाते, वो लकां के वास्तविक यानी द रियल से जोड़ते हैं? ये वास्तविक क्या चीज है? सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है।
है तो रहस्यमयी। इसे ऐसे समझिए, हमारी जो दुनिया है वो भाषा, नियमों, प्रतीकों से बनी है। इसे लेका प्रतीकात्मक व्यवस्था कहते हैं, सिंबॉलिक ऑर्डर कहते हैं। ये एक तरह की चादर है जो असलियत की भयावहता या उसके खालीपन को ढकती है। वास्तविक वो चीज है जो इस चादर में हमेशा छेद करती रहती है, जिसे ये व्यवस्था पूरी तरह कभी संभाल नहीं पाती। वो कोई भयानक हादसा हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा, कोई ऐसा सच जो हमारे बनाए सारे मतलबों को बिखेर दे। ये वो दर्दनाक शून्य है, वो खालीपन है जिसे हमारी विचारधाराएं और कल्पनाएं भरने की लगातार कोशिश करती हैं, पर कभी पूरी तरह कामयाब नहीं होती।
अच्छा,
ज़िज़ेक कहते हैं कि बड़े सामाजिक संकट, क्रांतियां या यहां तक कि कला के कुछ अनुभव वो हमें इस वास्तविक के करीब ले जाते हैं और हमारी स्थापित व्यवस्था को हिला देते हैं।
अच्छा, तो विचारधारा वो चादर है जो इस वास्तविक के छेद को, उस खालीपन को ढकने की कोशिश करती है। और आज के दौर में ज़िज़ेक के अनुसार पूंजीवाद और उसकी जो ये उदार सहिष्णुता है, वो ये काम कैसे कर रही है? वो तो उदारवाद और मल्टीकल्चरलिज्म की काफी आलोचना करते हैं, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या सहिष्णुता बुरी चीज है?
हाँ, ये ज़िज़ेक के सबसे विवादास्पद तर्कों में से एक है। देखिए, वो सहिष्णुता के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस खास तरह की उदार सहिष्णुता, लिबरल टॉलरेंस की आलोचना करते हैं, जो आजकल पश्चिमी समाजों का मंत्र बन गई है।
अच्छा, किस तरह की?
उनका तर्क यह है कि ये जो सब चलता है वाली संस्कृति है, जहां हर जीवन शैली, हर विचार को सतही तौर पर स्वीकार करने का दिखावा किया जाता है, असल में ये एक बहुत चालाक वैचारिक चाल है।
चाल? कैसे?
ये हमें छोटे मोटे सांस्कृतिक मतभेदों पर बहस करने में उलझाए रखती है, ताकि हम व्यवस्था की असली बुनियाद यानी आर्थिक शोषण, बढ़ती असमानता, पर्यावरण का विनाश, इन पर सवाल न उठाएं। ये सहिष्णुता हमें एक झूठी आज़ादी का एहसास तो देती है, लेकिन असल में ये यथास्थिति बनाए रखने का एक औजार बन जाती है।
वो इसे एक तरह की विकृति कहते हैं, मतलब नियमों को थोड़ा तोड़ने की इजाजत देकर असल में बड़े नियम को और मजबूत करना।
अरे बाप रे, यानी ऊपर से आज़ादी, अंदर से नियंत्रण। ये तो वाकई एक बिल्कुल अलग नज़रिया है, और इसी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए वो देकार्त के मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ वाले विचार यानी कर्ता को फिर से जिंदा करने की बात करते हैं। आजकल तो ज़्यादातर विचारक कर्ता को तोड़ने की बात करते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म तो यही कहता है ना।
हाँ, और ये ज़िज़ेक का एक और चौंकाने वाला कह सकते हैं कदम है। पोस्ट मॉडर्न विचारकों ने अक्सर ये तर्क दिया कि कर्ता एक भ्रम है, हम सब तो समाज और भाषा की पैदाइश हैं। ज़िज़ेक कहते हैं नहीं, हमें उस पुराने कर्ता की जरूरत है, लेकिन एक नए रूप में।
नए रूप में कैसा कर्ता?
ये वो कर्ता है जो अपनी सारी सामाजिक पहचानों से, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, राष्ट्र हो, उनसे खुद को अलग करके एक खालीपन, वॉइड से सोचने और फैसला करने की हिम्मत रखता है। यही खाली कर्ता उनके अनुसार किसी भी असली राजनीतिक बदलाव की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि ये किसी स्थापित विचारधारा या पहचान से बंधा नहीं है। इसमें देखिए, हेगल, मार्क्स और लका तीनों के विचारों का निचोड़ है। हेगल से विरोधाभास को समझना, मार्क्स से पूंजीवाद की आलोचना करना और लका से ये जानना कि हमारी इच्छाएं और विचारधाराएं कैसे हमें बांधती हैं और कैसे उनसे आजाद हुआ जा सकता है।
ये सब सुनने में जितना जटिल है उतना ही दिलचस्प भी है, और उनकी सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि वो इन मुश्किल विचारों को फिल्मों और चुटकुलों के जरिए समझाते हैं। उनकी पहली बड़ी किताब द सबलाइम ऑब्जेक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, जो 1989 में आई थी, जिसने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया, वो इसी स्टाइल के लिए जानी जाती है ना?
बिल्कुल, वो किताब बर्लिन की दीवार गिरने के ठीक बाद आई
और उसने अकादमिक दुनिया में समझिए तहलका मचा दिया। उसमें उन्होंने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हिचकॉक की फिल्मों, हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों, यहाँ तक कि रोजमर्रा के चुटकुलों का इस्तेमाल किया लकां और मार्क्स के सिद्धांतों को समझाने के लिए।
गजब।
हाँ, उसने दिखाया कि दर्शन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी पॉप कल्चर में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छिपा हुआ है। उनकी एक और अहम किताब है वायलेंस, जो 2008 में आई। उसमें वो बताते हैं कि हमें सिर्फ उस हिंसा पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो दिखती है, जैसे दंगे या अपराध, बल्कि उस छिपी हुई व्यवस्थागत हिंसा, सिस्टमिक वायलेंस पर भी ध्यान देना चाहिए जो पूंजीवादी सिस्टम में रची बसी है, जैसे गरीबी या पर्यावरण का विनाश। इसे वो वस्तुनिष्ठ हिंसा, ऑब्जेक्टिव वायलेंस कहते हैं, जो शायद दिखने वाली हिंसा से ज्यादा खतरनाक है।
उनका एक मशहूर कथन भी है जो शायद इसी से जुड़ता है, सिनेमा परम विकृत कला है। ये आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, ये आपको बताता है कि इच्छा कैसे करें। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, कला विकृत कैसे हो सकती है?
हाँ, ये उनकी फिल्म है द पर्वर्ट्स गाइड टू सिनेमा, उसी से है। देखिए, विकृत से उनका मतलब यहाँ बुरे से नहीं है। वो कह रहे हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि वो हमारी सबसे गहरी इच्छाओं को, हमारी कल्पनाओं को आकार देता है।
अच्छा।
फिल्में हमें सिखाती हैं कि हमें क्या चाहना चाहिए, कैसे प्यार करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। इस मायने में ये एक बहुत शक्तिशाली वैचारिक मशीन है जो हमें अनजाने में बताती है कि सही तरीके से इच्छा कैसे की जाए। यह हमें वो नहीं देती जो हम शायद पहले से चाहते हैं, बल्कि हमारी चाहत को ही गढ़ती है, उसे बनाती है।
तो मतलब हमारी इच्छाएं भी हमारी अपनी नहीं होती। ये तो एक और परेशान करने वाला विचार है।
हाँ, ये लखां से लिया गया विचार है जिसे झिझक खूब इस्तेमाल करते हैं। उनका एक और कथन है इसी से मिलता जुलता, हमारे लिए समस्या ये नहीं है कि हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं या नहीं, समस्या ये है कि हम कैसे जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम जो चाहते हैं, पैसा, प्यार, सफलता, क्या वो वाकई हमारी अपनी चाहत है, या समाज ने, विज्ञापनों ने, फिल्मों ने हमें सिखाया है कि हमें यही सब चाहना चाहिए। झिझक कहते हैं कि असली आज़ादी तब शुरू होती है जब हम अपनी इच्छाओं के स्रोत पर ही सवाल उठाना शुरू करते हैं।
और शायद इसीलिए वो कभी कभी कहते हैं कार्य मत करो, बस सोचो। ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है, आजकल तो सब एक्शन की, तुरंत कुछ करने की बात करते हैं।
हाँ, ये जानबूझकर उकसाने वाला बयान है। उनका मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में एक्शन लेने से बेहतर है कि पहले गहराई से स्थिति का विश्लेषण किया जाए।
अच्छा।
वरना हो सकता है कि हमारा एक्शन, जिसे हम बदलाव लाने वाला समझ रहे हैं, वो अनजाने में उसी सिस्टम को और मजबूत कर दे जिसे हम बदलना चाहते हैं। सच्ची राजनीतिक कार्रवाई के लिए पहले सच्ची गहरी सोच जरूरी है।
इस तरह के विचारों के कारण उनकी तुलना दूसरे समकालीन विचारकों से कैसे की जाती है? मतलब वो कहाँ फिट होते हैं इस पूरे नक्शे में?
देखिए, वो किसी खांचे में आसानी से फिट नहीं होते। जैसे जर्मनी के बड़े विचारक हैं यूर्गेन हाबरमास, वो तर्क और सहमति से समाज को बेहतर बनाने की बात करते हैं। अमेरिका के जॉन रॉल्स जैसे विचारक न्यायपूर्ण प्रक्रियाओं पर जोर देते हैं। झिझक इन सबसे अलग हैं।
कैसे?
वो राजनीति में असहमतियों, संघर्षों और यहाँ तक कि जो अतार्किक चीजें हैं उनको भी अहम मानते हैं। इस मामले में वो थोड़े थोड़े कार्ल श्मिट जैसे लगते हैं, लेकिन बिल्कुल वामपंथी नजरिए से। और अगर भाषाविदोल एक्टिविस्ट नोआम चॉम्स्की से तुलना करें।
हाँ, चॉम्स्की से।
चॉम्स्की तथ्यों और आंकड़ों से सत्ता की आलोचना करते हैं, है ना? झिझक उन अदृश्य विचारधाराओं, कल्पनाओं और इच्छाओं में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं जो उन सत्ता संरचनाओं को टिकाए रखती हैं। उनका फोकस अलग है।
तो कुल मिलाकर झिझक की विरासत क्या है? आज वो क्यों प्रासंगिक है? क्या वो सिर्फ एक अकादमिक हस्ती हैं, या उनकी बातों का हमारी जिंदगी से भी कोई लेना देना है?
मेरे ख्याल से उनकी प्रासंगिकता बहुत गहरी है। वो शायद आज दुनिया के सबसे जाने माने पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने हेगेल और लकां जैसे मुश्किल समझे जाने वाले दार्शनिकों को फिर से चर्चा में ला दिया है।
हाँ, ये तो है।
लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो हमें आज की दुनिया को समझने के लिए कुछ अनोखे औजार देते हैं। उपभोक्तावाद क्यों हम पर इतना हावी है, क्यों दुनिया लगातार संकटों से गुजर रही है, पहचान की राजनीति के पीछे क्या चल रहा है, इन सवालों पर सोचने के लिए झिझक एक नया, अक्सर परेशान करने वाला लेकिन जरूरी नजरिया देते हैं। वो दिखाते हैं कि दर्शन सिर्फ हाथी दांत की मीनार में बैठकर करने वाली बहस नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी फिल्मों, हमारे मजाक,
इन सब में भी मौजूद हैं। वो एक तरह के सांस्कृतिक डॉक्टर हैं जो हमारे समय के लक्षणों को पकड़ते हैं और उनके पीछे छिपी बीमारी की तरफ इशारा करते हैं।
लेकिन डॉक्टर की तरह उनकी दवा भी कभी कभी बहुत कड़वी होती है, उनकी आलोचना भी तो कम नहीं होती। उन पर अक्सर अस्पष्ट होने, जानबूझकर मुश्किल भाषा इस्तेमाल करने या सिर्फ चौंकाने के लिए बातें कहने के आरोप लगते हैं।
बिल्कुल, अकादमिक जगत में कई लोग उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लेते। कहते हैं कि वो कठोर तर्क के बजाय प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। पॉप कल्चर के उदाहरण भी चुन चुन कर इस्तेमाल करते हैं जो उनके तर्क को सूट करे। नॉम चॉम्स्की ने तो यहां तक कहा था कि वो बस शब्दों का आडंबर करते हैं, असल में कुछ कहते नहीं। और राजनीतिक रूप से भी वो हमेशा विवादों में रहते हैं। कभी हिंसा को जरूरी बताने वाले उनके बयान, कभी शरणार्थियों पर उनकी कुछ टिप्पणियां, या कभी लेनिन जैसे विवादास्पद नेताओं की तारीफ करना, इन सब पर काफी हंगामा मचता है।
हाँ, मैंने भी सुना है।
आलोचक कहते हैं कि वो खतरनाक, यहां तक कि सत्तावादी विचारों से खेलते हैं। उन पे हमने ही तर्क और उदाहरण बार बार दोहराने और एक बार तो साहित्यिक चोरी का भी आरोप लग चुका है, हालांकि उन्होंने उसे अनजाने में हुई गलती बताया था।
तो फिर सवाल उठता है कि क्या हमें उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए इन सब आलोचनाओं के बावजूद?
मेरे हिसाब से हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए, उनकी आलोचनाओं में दम हो सकता है, लेकिन उनकी अहमियत शायद इसी में है कि वो हमें असहज करते हैं। वो हमें बने बनाए जवाब नहीं देते, बल्कि और ज्यादा गहरे सवाल पूछते हैं। वो हमें हमारी मान्यताओं पर, हमारी जीवन शैली पर, हमारी राजनीति पर, सब पर पुनर्विचार करने के लिए उकसाते हैं। आप उनसे सहमत हो या असहमत, उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। उनकी एक और बात याद आती है जब वो अपने राजनीतिक स्टैंड के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं, मैं एक बहुत ही सरल कारण से कम्युनिस्ट हूं। मुझे लगता है कि वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था एक विनाशकारी बिंदु के करीब पहुंच रही है।
कम्युनिस्ट आज के जमाने में?
हाँ, लेकिन यहाँ वो सोवियत संघ वाले कम्युनिज्म की बात नहीं कर रहे। उनका मतलब है कि मौजूदा पूंजीवादी सिस्टम जिस तरह पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था को संकट में डाल रहा है, उसे देखते हुए हमें एक बिल्कुल नए विकल्प के बारे में सोचना ही होगा। और फिलहाल कम्युनिज्म उस जरूरत का, उस खाली जगह का नाम है। वो एक रेडिकल बदलाव की जरूरत की ओर इशारा कर रहे हैं।
उनकी शख्सियत भी तो बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं लेक्चर देते वक्त वो अजीब तरह से नाक पोंछते रहते हैं, अपनी शर्ट खींचते रहते हैं।
उनके वो शारीरिक टिक्स तो बहुत मशहूर हैं, और उनके बारे में कई और मजेदार बातें। जैसे वो कहते हैं कि वो बस गिनी चुनी फिल्में ही बार बार देखते हैं।
अच्छा, कौन सी?
जैसे कैसाब्लांका, द साउंड ऑफ म्यूजिक। और वामपंथी विचारक होने के बावजूद वो स्वीकारते हैं कि उन्हें अच्छा खाना और थोड़ी विलासिता पसंद है। लुब्रियाना में उनके घर में कहते 30,000 से ज्यादा किताबें।
बापरे।
1990 में वो स्लोवेनिया के राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़े थे, हालांकि हार गए। और अपनी इतनी विस्फोटक सार्वजनिक छवि के बावजूद निजी जीवन में वो खुद को एक डरा हुआ परंपरावादी बताते हैं, जिसे रूटीन और व्यवस्था पसंद है।
क्या बात है, मतलब एक जीता जागता विरोधाभास।
बिल्कुल, और शायद यही जीजेक हमें सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। वो हमें मजबूर करते हैं कि हम अपनी दुनिया के, अपने समाज के, और हाँ, खुद अपनी इच्छाओं के अंदर छिपे विरोधाभासों का सामना करें। क्या हम एक ही साथ पर्यावरण बचाने की बात करते हुए अंधाधुंध उपभोग कर सकते हैं?
मुश्किल सवाल है।
क्या हम आज आजादी का जश्न मनाते हुए नई तरह की गुलामियों को, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो या विचारधारा की, स्वीकार कर रहे हैं? जिजेक हमें इन मुश्किल सवालों से भागने नहीं देते। वो पूछते हैं कि क्या आज के संकट इतने गहरे हैं कि हमें हर चीज पर, हमारी राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी नैतिकता, यहां तक कि हमारे जीने के तरीके पर बिल्कुल बुनियादी स्तर पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी देन है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।